महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन कीजिए। पुलत्स जी बोले, हे राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ है जिनका नाम लेने से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहाँ पर जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, यह मनोवांछित फल को देने वाला होता है। हे भीष्म, पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहलाए गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल मिलता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहाँ पर अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था, हे महामुने, मुझे ये सारी बात बताएं। पुलत्स जी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुग की बात है, बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा रखा था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्होंने त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बालक पाशकली नाम के एक दानव सबसे बलवान थे। उसने समस्त दानवों का यज्ञ का भुक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ, वे अपने जीवन से निराश होकर चल गए। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानव राज बाष्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है, अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की शरण लूंगा। उनके सिवा मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, ऐसा विचार करके देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ पर वो ब्रह्मलोक पर गए, जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, हे देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? हे प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। मैं दुरात्मा बाष्कलिक के सारे करतूते आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। हे पितामह, आप ही हमारे पिता हैं, हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय बताएं। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यज्ञादि उठ गए हैं, उत्सव तथा मंगल की बातें चली गई हैं, सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है, दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ा से ग्रस्त था ही, अब वो कष्टतर दशा की को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ही ग्लानी उठानी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, मैं जानता हूँ बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु उसे ठीक कर सकते हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए और उनके चिंतन के कारण ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहाँ पर आ पहुँचे। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो, जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही साक्षात तुम्हारे पास आ पहुँचा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आकर आपने मुझे दर्शन दिया, यह बड़ी कृपा की बात है। जगत के लिए जगदीश्वर की जितनी चिंता है उतनी ही किसी और को नहीं हो सकती। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की यह दशा है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोक की को अपने अधिकार से बाष्कली ने छीन लिया है। हे केशव, अब आप ही सलाह देकर इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम्हारे वरदान से यह दानव अवध्य हो गया है, तथापि बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूँगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चले और वहाँ पर जाकर इस प्रकार वर की याचना करे। हे राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। हे महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहकर दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। हे पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूँगा, फिर उसे बांध कर मैं पाताल का निवासी बनाऊँगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन उसके गर्भ में प्रवेश किया उसी दिन से स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी और समस्त दिशाएं निर्मल हो गई। सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद भूतभावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों ने अपने मन में अपूर्व उत्साह भर दिया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगारे बजने लगे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत प्रारंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगा तो कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो बैठा। देवता लोग मन ही मन में विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ इनका ही है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है और इसके एक होते हुए भी पृथक पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से भी वह प्रसिद्ध होते हैं। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र से प्रतीत होती है, वैसे ही मध्यम गुणों के संसर्ग से स्वयं परमात्मा भी नाना रूपों में प्रतीत होते हैं। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आहवनी याग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं
को प्राप्त होती है, वैसे ही भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेक रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार का सोच कर रहे थे, तभी उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाष्कली के घर पर गए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी हुई थी। सब प्रकार के रत्नों से सज्जे ऊंचे ऊंचे सफेद महल तथा आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे। उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं था, कोई ऐसी विद्या नहीं थी, कोई ऐसा शिल्प नहीं था, कोई ऐसी कला नहीं थी जो बाष्कली की नगरी में मौजूद नहीं हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करते थे। वह धर्म के ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उनकी बुद्धि कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागत का रक्षक तथा दीन तथा अनाथों पर दया करने वाले थे। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति तथा उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न थे। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव तथा समाश्रय, राजनीति के इन छह गुणों का अवसर के अनुकूल वह प्रयोग करते थे और सदा उत्साहित रहते थे। वह सबसे सस्मित बात करते थे। वेद तथा वेदांतों के तत्व का उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। वह यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाले, शुद्ध हृदय वाले, प्रसन्न मुख वाले, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाले, संपूर्ण विषयों के ज्ञाता, दुदर्मनी, यह सौभाग्यशील, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाले, बड़े धनी और बहुत बड़े दानी भी थे। वह धर्म, अर्थ, काम तीनों की साधना में संलग्न रहते थे। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज के राज्य में कभी भी अधर्म नहीं था। उसकी प्रजा कोई भी ऐसा नहीं था जिसे दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप और दुर्भाग्यशाली और अपमानित होना पड़े। इंद्र को आते देखकर दानवों के राजा बाष्कली ने कहा, हे प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है, आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण को साथ में लेकर अकेले ही हमारी नगरी में आए हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य है उसे शीघ्र ही बताएं। उसकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, हे दानवों, इस नगर में देवराज को आदर से ले आना चाहिए, वे हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर स्वयं ही इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल के बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की सातवीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ समझा। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन का राज लक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया हुआ देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की क्या बात है, ऐसा सोचकर सामने आकर इंद्र को अंग में भरकर बड़े आदर के साथ उन्होंने गले में लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले गए। फिर अर्घ्य तथा आचमन आदि से उन दोनों का यत्नपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बासुकली बोले, हे इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया हुआ देखता हूँ, इसलिए मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। हे प्रभु, मेरे पास आकर आपका प्रयोजन कैसे हुआ, मुझे सारी बात बताएं। यहाँ पर आने का कष्ट आपने क्यों लिया, इसे मैं बड़ी आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, हे बासुकली, मैं जानता हूँ कि दानव वंश में श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक को भी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। तुम याचकों के लिए भी कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान कोई दाता नहीं है। तुम प्रभाग में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने मुझसे तीन पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु हे बासुकली, मेरा त्रिभुवन का राज्य तुमने पराक्रम से छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ, इसलिए इनको कोई भूमि दे नहीं सकता। इसलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये है। हे दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभिष्ट हो तो इस वामन जी को तीन पग भूमि का दान दो। बासुकली ने कहा, हे देवेंद्र, आप भले पधारे हैं, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त होकर परम पद का हमेशा चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अपने अनेक संग्रामों से थक कर जगत की चिंता छोड़कर क्षीर सागर का आश्रय लेते हैं और सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे हैं। मुझसे भिन्न भिन्न बहुत से दानव और जो बलवान से भी और बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराए हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वशु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्गलोक में यज्ञ के भाग का ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों का से के द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत और नमुची आपके ही हाथों से मारे गए हैं। आपने ही पाक नाम के दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान श्री विष्णु आपकी ही आज्ञा से देव दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी झांग पर बिठाकर उन्होंने मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए हुए संग्राम की भूमि में आते हैं। उस समय आपको देखकर ही सारे दानव भाग खड़े होते हैं। पूर्व काल में बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर आपने विजय प्राप्त की थी। हे देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, उस आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही पदार्पण किया है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, आपके लिए अपने प्राण का भी दान दूंगा। हे देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी ही भूमि की बात क्यों की। यह स्त्री, पुत्र, गौ और जो कुछ भी धन मेरा है, वह सब त्रिलोकी के सारा राज्य ब्राह्मण देवताओं के लिए है। आप ऐसा कर मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर बड़ी कृपा करें, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बासुकली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दान में दिया था।
आप ही क्यों? दूसरा कोई भी याचक मेरे पास आए तो वह सदा ही मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में से सबसे आदरणीय हो, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना होगा। परंतु हे देवराज, मुझे इस बात की लज्जा आ रही है कि इन ब्राह्मण देवताओं को के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 पग भूमि की मांग कर रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे से अच्छे गांव दूंगा और मैं उन्हें स्वर्ग का राज्य भी अर्पण करूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करें और यह सबका स्वीकार करें। पुलत्स्य जी कहते हैं, हे राजन, दानवराज बाष्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे महाराज, तुम्हें उचित और अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए, इस ज्ञान से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भलीभांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें अपना कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते हुए ही आप बंधन में पड़ जाओगे। हे राजन, ये जो वामन है वह साक्षात सनातन भगवान विष्णु को समझना चाहिए। इनके लिए तुम्हें कुछ भी दान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद किया था और आगे भी वो करेंगे। इन्होंने माया से दानवों को पराजित किया था और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का स्वरूप लेकर तुम्हारे सामने दर्शन दे रहे हैं। अतः बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें कुछ भी न दो। 3 पग तो बहुत है, मक्खी के पैर के समान भूमि पर उन्हें देना स्वीकार न करो। यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो शीघ्र ही शीघ्र तुम्हारा नाश होगा। यह मैं तुम्हें सच बात कहता हूँ। बाष्कली ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ही भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं की समृद्धशाली देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य इसमें कौन होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर जिसका ध्यान करते हैं उस भगवान का दर्शन वो जल्दी नहीं कर पाते। उन्होंने मुझे यहाँ पर दर्शन दिया है, तब तो उन्होंने देवेश्वर ने मुझे भी बहुत धन्य बना दिया है। जो लोग हाथ से कुशल कुश हाथ में कुश और जल लेकर दान करते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु को प्रसन्न हो इस प्रकार के वचन से ही मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया है। यह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आया हुआ हो तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे देने का निश्चय किया है। जिस दान में देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता है, ऐसा दान तो संसारी सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, हे देव, आपके मांगने में मैं सारी पृथ्वी देता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि चाहिए तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, हे दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवताओं ने मुझसे केवल 3 ही पग भूमि की याचना की थी। इसको उतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की थी, अतः उन्हें वही वर प्रदान करो। बासकली ने कहा, हे देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चीर काल तक वहाँ सुख से निवास कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, यह कहकर बासकली ने हाथ में जल लेकर साक्षात श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। देवराज के दान करते ही श्रीहरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित की इच्छा से संपूर्ण लोकों का नाप करके वो बड़े खड़े हो गए। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गए थे। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्यलोक में रखा और दूसरा ध्रुवलोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले वो भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड का आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही श्री भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी देवी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरण से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बासकली से कहा, मैंने 3 पग पूर्ण करे, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बासकली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी थी उसमें से मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझसे सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर मैं आपके 3 पग पूर्ण करूं। हे देव, आप जैसे प्रभु की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। हे देव, आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही केवल मनोवांछित कार्य पूर्ण करने में समर्थ होती है। सत्यवादी बासकली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के लिए योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा है वो मांगो, मैं दूंगा। बासकली ने कहा, हे देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके हाथ से ही हो, जिससे मुझे आपके परम धान श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलत्स्य जी कहते हैं, बासकली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक वहाँ पर ठहर कर रहो। जिस समय वारा रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूँगा, उसी समय मैं तुम्हारा वध करूँगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी त्रिलोकी का राज्य छीन कर अंतर्ध्यान हो गए। बासकली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगे। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु वामन अवतार का वर्णन है। इसमें गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। यह प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला होता है। यह मैंने श्री विष्णु के 3 पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर इस संपूर्ण संसार में लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्री विष्णु के पगों का दर्शन करने मात्र से दुस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित भगवान श्री विष्णु के चरणों का दर्शन प्राप्त करके पाप से छुटकारा प्राप्त करते हैं। हे भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर पर्वत पर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वह सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु के धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, हे भगवान, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बासकली बंधन में डाले गए। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल के लोक में मौजूद है। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ। सुनो, पहली बार की कथा तो तुमने सुन चुके हो, दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मन्वंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय देवाधिदेव अकेले ही ब्रह्म यज्ञ में जाकर भगवान बलि को बांध लिया था और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन रूप से अवतार हुआ और पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया। वे पहले वामन होकर फिर अवामन विराट हो गए।